ஆதிகுரு பகவான் சங்கராச்சாரிய விரச்சித் சிவானந்த லஹரி கா பிரசங்க சல் ரஹா ஹை. 29வா ஸ்லோக் அபியாஸ் கே லியே 29வா ஸ்லோக்.
துத்பாதாம்புஜமர்ச்சயாமி பரமம் த்வாம் சிந்தயாம்யன்வஹம் த்வாமீஷம் சரணம் வ்ரஜாமி வசஸா த்வாமேவ யாச்சே விபோ வீக்ஷ்யாம் மே திஸ சாக்ஷுஷிம் சகருணாம் திவ்யைச்சிரம் ப்ரார்த்திதாம் சம்போ லோக குரோ மதீய மனச சௌக்கியோபதேசம் குரு. வஸ்த்ரோத்தூத விதௌ சஹஸ்ரகரதா புஷ்பார்ச்சனே விஷ்ணுதா கந்தே கந்தவாத்மதான்னபச்சனே பர்ஹிர்முகாத்யக்ஷதா பாத்ரே காஞ்சன கர்வதாஸ்தி மயி சேத் பாலேந்துச்சூடாமணே சுஸ்ரூஷாம் கரவாணி தே பசுபதே ஸ்வாமின் த்ரிலோகி குரு. நாலம் வா பரமோபகாரகமிதம் தேகம் பசூனாம் பதே பஸ்யன் குக்ஷிகதான் சராச்சரகணான் வாய்யஸ்திதான் ரக்ஷிதும் சர்வாம் மர்த்யபலாயனௌஷதமஜ்ஜித் ஜ்வாலாகரம் பீகரம் நிக்ஷிப்தம் கரலம் கலேன கலிதம் நோதீர்ணமேவ த்வயா ஜ்வாலோக்ர சகலா மராதி பயத ஷ்வேல கதம் வா த்வயா த்ருஷ்ட கிம் ச கரே த்ருத கரதலே கிம் பக்வ ஜாம்பூஃபலம் ஜுஹ்வாயாம் நிஹிதஸ்ச சித்த புடி குடிகா வா கண்ட தேசே பிரித கிம் தே நீலமணிர் விபூஷணமயம் சம்போ மகாத்மன் வத. நாலம் வா சக்ருதேவதேவவவத சேவாநதிர்வாநுதீ பூஜா வா ஸ்மரணம் கதா ஸ்ரவணத்மம் ஆப்யாலோகம் மாத்ருஷாம் ஸ்வாமின் அஸ்திர தேவதானுசரணா யாசேன கிம் லப்யதே காவா முக்திரிதஹ குதோ பவதி சேத் கிம் பிரார்த்தனீயம் ததா. த்வத்பாதாம்புஜமர்ச்சயாமி பரமம் த்வம் சிந்தயாம்யன்வஹம் த்வாமீஷம் சரணம் வ்ரஜாமி வசஸா த்வாமேவ யாச்சே விபோ வீக்ஷ்யாம் மே திஸ சாக்ஷுஷிம் சகருணாம் திவ்யைச்சிரம் ப்ரார்த்திதாம் சம்போ லோக குரோ மதீய மனச சௌக்யோபதேசம் குரு.
ஆதிகுரு சங்கராச்சாரிய ஜி பகவான் சிவ கி ஸ்துதி கர்த்தே ஹுயே கஹ்தே ஹை ஈஷா. யா சம்போதன் ஹை ஈஷா. இஸ் ஸ்லோக் மே தீன் சம்போதன் ஹை. பஹ்லா சம்போதன் ஹை ஈஷா. தூஸ்ரா சம்போதன் ஹை விபோ. और तीसरा संबोधन है लोक गुरु. ये तीनों संबोधन भगवान शिव के लिए परमात्मा के लिए महत्वपूर्ण है. ईश शब्द का अर्थ होता है मालिक. उसके ऊपर कोई दूसरा शासक नहीं है, उसका नियंत्रक कोई नहीं है। जो सबका नियंत्रक है लेकिन उसका नियंत्रक कोई नहीं है, उसको ईसा कहते हैं। और ये ईसा शब्द द्वारा ही भगवान शिव का ऊर्ध्वमुख ईशान हुआ है। ज्ञानी ही शासन कर सकता है वास्तव में। आजकल तो मूर्ख लोग शासन कर रहे हैं, इसलिए शासन तंत्र गड़बड़ा रहा है। हमारे नीतिकारों ने कहा है, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धस्य कुतो बलम। जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास ज्ञान है, वास्तव में वही शक्तिशाली है। बुद्धि का बल ही बल माना जाता है। बुद्धि यदि नहीं है तो शारीरिक बल या बाकी बल, धन का बल, पद का बल, जन का बल, जन बल, धन बल और तन बल, ये आत्मघातक होंगे यदि बुद्धि नहीं है तो। और यदि बुद्धि है तो न तन बल की आवश्यकता है, न जन बल की आवश्यकता है, न धन बल की आवश्यकता है। बुद्धि बल सर्व बल में प्रधान बल है, और वही विचारवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान व्यक्ति के पास जो है, उसी बल के द्वारा वो शासन करता है तो सभी व्यवस्थित हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। इसलिए भगवान शिव को ईशह संबोधन किया। सामवेदी ये पहले मंत्र ही है, ईशावास्य उपनिषद। ईशम भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा है कि ईशनाथ ईशम, उसका नाम ईश क्यों पड़ा, तो क्योंकि सबका शासन करता है इसलिए वह ईश है। और भगवान शिव शासन कैसे करते हैं, तो बुद्धि बल से शासन करते हैं, इसलिए भगवान शिव का ज्ञान बल ही सर्व शासन करने में सामर्थ्यता प्रदान करता है। इसलिए ईशान शब्द का अर्थ होता है ज्ञान मुख। ईशान सर्व विद्यानाम ईश्वर, सर्व विद्यानाम ईश्वर वही ईशान है। समस्त विद्या का जो ईश्वर होगा तो वह तो ब्रह्म विद्या ही होगी, ज्ञान ही होगा, आत्मज्ञान ही होगा। तो उस अर्थ में यहां ईशा ये संबोधन शंकराचार्य जी बड़ी श्रद्धा से भगवान शिव को कहा कि हे ईशा। दूसरा संबोधन है विभो। विभो शब्द व्यापक अर्थ में प्रयोग किया जाता है, और संबोधन में विभो, हे विभो शब्द है विभु, और संबोधन में विभो बनता है। तो विभु माने व्यापक, सर्वत्र जिसका अन्वय होता हो, जिसका व्यतिरेक कहीं भी संभव न हो, उसी को विभु कहते हैं। और जहां एक जगह भी जिसका व्यतिरेक संभव होगा तो उसको विभु नहीं कह पाएंगे। सामान्य लौकिक दृष्टि से शास्त्र में हम लोग आकाश को विभु कहते हैं, लेकिन ये आकाश परमात्मा जैसा व्यापक नहीं है। एक आंशिक व्यापक होने के कारण उपमित किया जाता है परमात्मा को, आकाश की उपमा दी जाती है, उपमा एक अंश में दी जाती है। परिच्छिन्न व्यापक है ये आकाश, परिच्छिन्न माने इस मर्त्यलोक में व्यापक है। आकाश मर्त्यलोक में तो व्यापक है, इस आकाश की गति, मृत्यलोक के बाद स्वर्ग में इस आकाश की गति नहीं है। ये नहीं समझ लेना कि इसी भौतिक भूताकाश के अंदर स्वर्गलोक भी होगा, ऐसा नहीं समझ लेना। स्वर्गलोक के स्वर्ग के आकाश अपने ही ढंग का है, स्वर्गलोक की भूमि धरती वो अपने ही ढंग की है, स्वर्गलोक का जल अपने ही ढंग का है, इसलिए स्वर्गलोक के प्राणी वो अपने ढंग के हैं। तुम्हारे हमारे जैसे स्वर्गलोक के प्राणी नहीं है। ये जितने भी लोक लोकांतर हैं, हैं सब प्राकृत, ये सभी लोक लोकांतर हैं तो प्राकृत, प्रकृति जन्य है, ये समष्टि प्रकृति जन्य है। जिस प्रकृति से मृत्यलोक बना है उसी प्रकृति से स्वर्गलोक बना है, लेकिन ये मृत्यलोक का जो आकाश है वो अपना आकाश है, स्वर्गलोक का आकाश अपना आकाश है, ब्रह्मलोक का आकाश अपना ही आकाश है, गंधर्वलोक का आकाश अपना ही आकाश है। भाई तो आकाश शब्द फिर भी हम व्यापक कहते हैं आकाश को, मृत्यलोक में व्यापक व्याप्त होकर रहने के कारण उसको हम उपमा देकर कह देते हैं कि आकाशवत् सर्वगतम च नित्यम। आत्मा कैसा है? बोले आकाश की तरह सर्वगत है, और अन्य भूतों की अपेक्षा आकाश बहुत नित्य है, ज्यादा नित्य है। अन्यथा तो आकाश जैसा नित्य परमात्मा नहीं है, आकाश भी नाशवान है। मृत्यलोक जब नाश होगा महाप्रलय में तो आकाश भी नष्ट हो जाएगा, आकाश आकाश नहीं रहेगा, जल जल नहीं रहेंगे, क्योंकि ये सब आकाश तो पंजीकृत हैं, भूत आकाश है। और ये आकाश कहां जाएगा महाप्रलय में? तो अपनी शब्द तन्मात्रा में लीन हो जाएगा। तो केवल शब्द तन्मात्रा रहेगा, आकाश नहीं रहेगा, स्पेस नहीं रहेगा। इसी तरह जल कहां चला जाएगा? तो रस तन्मात्रा में चला जाएगा, क्योंकि अपना कार्य हमेशा अपने कारण में ही लीन होता है। जिस उपादान कारण में, जिस कारण में, कारण से पैदा हुआ, उसी कारण में लीन होने के कारण उसको उपादान कारण बोलते हैं। उसके प्रकट्य अभिव्यक्ति से पहले वह है, प्राकट्य के बाद भी रहेगा और नाश के बाद भी रहेगा वो। इसके बावजूद वो किसी का कारण बनता है तो वह कारण उपादान कारण होता है। तो गीता के साथ में अध्याय का प्रसंग आजकल सुबह चल रहा है, ओता प्रोता सूत्रे मणिगणा युवा, ये प्रसंग इसी श्लोक की व्याख्या चल रही है आजकल। तो ये सब प्राकृत है, फिर भी आग परमात्मा को समझने के लिए विभू कहा। विभू, विभू माने व्यापक। जैसे वस्त्र में सूत व्यापक है या कपास व्यापक है, सर्वत्र अनुगत है। कपास की उपस्थिति न हो दुनिया में ऐसा कोई वस्त्र नहीं है। वस्त्र हो फिर भी कपास की उपस्थिति न हो, दुनिया में कोई वस्त्र संभव नहीं है। कपास हो लेकिन वस्त्र की उपस्थिति न हो, संभव है। इसीलिए वस्त्र व्यापक नहीं हो सकता कपास की अपेक्षा से, और कपास वस्त्रों की अपेक्षा व्यापक है, हर वस्त्र में उसकी उपस्थिति है। इसी तरह मृत्तिका और घट के बारे में विचार करो तो पृथ्वी में यावत मृत्तिका में घट विद्यमान नहीं है, लेकिन यावत घट में मृत्तिका विद्यमान है। तो हम घट को व्यापक नहीं कर सकते, विभू नहीं कर सकते, लेकिन मृत्तिका को हम व्यापक या विभू कर सकते हैं। एक ही घड़े में भी, घड़े के यावत अंग प्रत्यंग में जहां भी हम स्पर्श करेंगे, उस घड़े के समग्र अस्तित्व में मिट्टी विद्यमान होने के कारण घट में मिट्टी व्यापक है। लेकिन ये घड़े में व्यापक है तो यावत घड़े में भी व्यापक है, लेकिन यावत मृत्तिका में घट विद्यमान नहीं है। जो मिट्टी हम छूते हैं उसमें घड़ा ही होगा, ये अनिवार्य नहीं है। बिना घट का भी मृत्तिका रह सकता है, लेकिन बिना मृत्तिका घट का अस्तित्व तो नहीं है। इसलिए यदि मृत्तिका, यदि घट मिट्टिका को संबोधन करना पड़े तो मिट्टिका मृत्तिका को विभो कह देते हैं, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसी तरह संसार में यावत जितने भी प्राणी हैं, भूत चराचर जितने भी हैं, जड़ चैतन्य स्थावर जंगम व्यक्ता व्यक्त, सारे वस्तुओं में व्यक्तियों में शिव तत्व व्यापक होने के कारण, अस्तित्व में होने के कारण परमात्मा को विभु ये संबोधन शंकराचार्य जी कर रहे हैं। और तीसरा संबोधन है लोक गुरु। दूसरे श्लोक में त्रिलोकी गुरु, तीनों लोक के गुरु हैं भगवान शिव। लोक गुरु का अर्थ केवल मर्त्यलोक का गुरु होंगे भगवान शिव, ऐसा नहीं समझ लेना। त्रिलोकी गुरु, तीनों लोक के वो गुरु हैं। इसीलिए उनके तीन नेत्र हैं भाई। एक एक लोक में एक एक चक्षु द्वारा एक एक लोक को शिक्षित करना है, इसलिए तो तीन नेत्र है। इसकी व्याख्या फिर करेंगे। यहां शिव का संबोधन है लोक गुरु, और ये प्रासंगिक भी है लोक गुरु, उपनिषद संबोधन है ये, क्योंकि भगवान शिव तीनों लोक के गुरु हैं। ये बात महर्षि पतंजलि भी खुद अपने मुख से कहते हैं। योग दर्शन के आचार्य, योग सूत्रों के रचनाकार महर्षि पतंजलि भी शिव को तीनों लोक के गुरु, लोक गुरु कहते हैं। एक सूत्र की रचना कर दी है, स पूर्वेशम अपि गुरु हु कालेन अनवच्छेदात। भगवान शिव तो पूर्व पूर्वों के जितने भी गुरु हुए हैं उन सभी गुरुओं का भी गुरु है। और वही उनकी जो गुरुत्व है, गुरुपना है, और उनकी दी हुई जो दिव्य उपदेश हैं, वही आज तक अपने अपने वर्तमान गुरुओं में भी वही विद्या, वही शिक्षा कालेन अनवच्छेद, बीच में कहीं प्रतिबंधक हुए बिना, वो प्रवाह के रूप में वही विद्या, वही शिक्षा, वही उपदेश जो शिव ने सबसे पहले सनत कुमारों को दी थी, वही विद्या आज हम लोगों को हमारे प्रत्यक्ष गुरु देते हैं। इसलिए उसको कहा स शिव परमात्मा पूर्वेशम, पहले पहले के जितने गुरु हुए हैं उन सब गुरुओं के भी वो गुरु है। पूर्वेशम अपि गुरु हु कालेन अनवच्छेदात। लोक गुरु के बारे में छांदों के उपनिषद का वो प्रसंग बड़ा सांदर्भिक है। भगवान शिव लोक गुरु हैं, पूर्वेशम अपि गुरु हैं। छांदों के उपनिषद का वो प्रसंग बड़ा सांदर्भिक है। आप लोगों ने कई बार सुना है प्रसंग। सनत कुमार जन्मनः, क्योंकि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, वो प्रारब्ध जन्य पुत्र नहीं है, कर्मजन्य नहीं है, मानस जन्म है, संकल्प से पैदा हुए थे सनत कुमार। लेकिन संकल्प से पैदा होने पर भी वह शरीरधारी थे, देहधारी थे, और उन्होंने क्योंकि वृद्धरेत थे, पूर्व पूर्व जन्मों के वैराग्य आदि साधना को वह योग भ्रष्ट के रूप में, मानस जन्म के रूप में वह सृष्ट हुए थे, पैदा हुए थे, और इसीलिए पूर्व संस्कार उनके पास विद्यमान थे। तो जन्मना उनको एषणात्रय से विनिर्मुक्त हो गए। जन्मना लोकेषणा पुत्रेषणा वित्तेषणा उनकी नहीं रही, क्योंकि पूर्व जन्म के जो श्रवण का फल था, पूर्व जन्म के वैराग्य का फल था, पूर्व जन्म के मुमुक्षु का फल था, जन्मांतर के मुमुक्षा का फल था, उर्धरेत तो हो गए। ब्रह्म विद्या पहले जन्म में श्रवण की थी, उपनिषद औपनिषद विद्या पूर्व जन्म में उन्होंने श्रवण की थी, वही संस्कार लेकर जन्म पैदा हुए थे, तो वो संस्कार यथावत विद्यमान था। उसका परिणाम क्या हुआ? पैदा होते ही ब्रह्मचर्चा में लग गए। पैदा होते ही सनत कुमार किसमें लग गए? ब्रह्मचर्चा में। हम तो मरने के दिन आने के नजदीक है तो भी ब्रह्मचर्चा में हमारी प्रवृत्ति नहीं हो रही है, फिर भी पूछते हैं महाराज इस जन्म में हमारी मुक्ति होगी कि नहीं, आके पूछते हैं हमसे हो, तो हम कह देते हैं कि हमारे कहने से मुक्ति हो जानी हो तो तुम अब भी मुक्त हो जाओ है? तो क्योंकि मुक्ति किसी के कहने से होने वाली चीज नहीं है, वो मुक्ति अपनी साधना और अपनी अवस्था पर अपनी भूमिका पर निर्भर करता है कि साधक अपनी साधना किस अर्थ में किस अंश में वह साधना के भूमिकाओं में आरूढ़ हुआ है उस पर निर्भर करता है मुक्ति है? तो हमसे पूछते हैं बहुत से लोग तो हमको हाँ इस जन्म में हमको मोक्ष मिलेगा कि नहीं महाराज, तो हम कह देते हैं हम ज्योतिष भी नहीं है और भविष्य वक्ता भी नहीं है, है? हमको तो वर्तमान में क्या होने वाला यही पता नहीं है, है? हमको तो यही पता नहीं है कि आज शाम को किस चीज की सब्जी मिलेगी, तुम लोगों को पता है, है? तो हम काहे को सर्वज्ञ हो गए भाई, है? हम कैसे बताएंगे तुम्हारी मुक्ति होगी कि नहीं, हमको तो पता नहीं आज शाम को किस चीज की सब्जी मिलेगी, जब थाल में आएगा तभी पता चलेगा कि हाँ इस चीज की सब्जी है। हाँ ये जरूर है कि रोटी के बारे में हमको शंका नहीं है, गांव की ही रोटी मिलेगी, लेकिन ये भी भरोसा नहीं है, पंजाब की तरफ हो तो कभी मक्के की रोटी मिल जाए, आशा करो गांव की रोटी मिलेगी और मक्के की रोटी आ जाए, आशा करो मक्के की रोटी तो मिस्सी रोटी आ जाए, पंजाबी लोग मिस्सी रोटी खूब खाते, मक्का की रोटी को मारवाड़ी लोग भी मिस्सी की रोटी को मिस्सी रोटी है गेहूं चना मिलाकर, मारवाड़ियों में जाते हैं तो हमेशा मिस्सी रोटी खाते हैं, पंजाबियों में जाते हैं तो मक्की दी रोटी सरों दा साग फेमस है, उनके डायलॉग ही बहुत प्रसिद्ध है। हमको तो यही पता नहीं हम सर्वज्ञ कहां से हैं, ज्ञानी कहां से हैं भाई। एक बार हमारे सामने बड़े संकट आ गया था दिल्ली में, बहुत पहले की बात है, आजकल तो दिल्ली जाना भी बंद हो गया, बहुत पहले हम कथा करने जाते थे दिल्ली में अशोक विहार एरिया है, तो वहां वेदनाथ महादेव मंदिर हमारे गुरु महाराज की प्रेरणा से हमारे भक्तों ने महाराज जी के भक्तों ने बनाया शिव मंदिर, नित्य सत्संग चलता है, तो वहां कथा करने के लिए गए तो प्रवचन समाप्ति के बाद एक माता जी ने कहा, पंजाबी माता जी थी, तो माता जी ने कहा कि महाराज आपसे मिलकर कुछ चर्चा करनी है। हमने कहा चलो आओ, कथा समाप्त हुई कमरे में गए तो वो भी आ गई तो और भक्त भी आ गए। हमने कहा माता जी आप क्या कह रही थी, कुछ कहने के लिए आई थी? बोले सब चले जाएं तब बात करेंगे। हमने कहा अच्छा भाई जाओ आप, तो सब लोग चले गए। हमने कहा बोलो आप क्या है, हाथ जोड़कर कहा महाराज जी आप तो सर्वज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं। पंजाबी लोग विद्वान नहीं बोल पाते हो, हंसी आती थी बचपन में, विद्वान नहीं बोलते विद्वावान तो हंसी आती थी हम लोगों का, हम लोग बचपन में ऐसे ऐसे पंजाबी जब बोलते हैं ना, छांदोग्य उपनिषद नहीं बोल सकते, छंदोग्या उपनिषद ऐसा हो, वो अकार को ठीक से नहीं बोल पाते, पहला अक्षर यदि हलंत है तो बोल ही नहीं पाएंगे वो, स्कूल हम बोलते हैं वो लोग स्कूल नहीं बोलते, स्कूल सीधे आधा सा को पूरे सा बोल देते हैं स्कूल, स्कूल नहीं बोलेंगे तो बड़ा उच्चारण में संस्कृत उच्चारण में ये भी जितना आप साउथ जाओ उतना ही स्पष्ट उच्चारण है और जितना नॉर्थ जाओ उतना ही वो उर्दू का थोड़ा सा प्रभाव नॉर्थ में दिखता है, इसलिए भाषा बिगड़ जाती है, लवज उच्चारण में फर्क पड़ता है, तो उसका कारण वही है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा खूब प्रशंसा कर दी तो हम तो फूले न समाए, ज्ञानी है सर्वज्ञ है त्रिकालदर्शी है, तो हमने कहा अच्छा भाई कहो, अच्छा माँ की क्या क्या कहने के लिए क्या कहना है तुमको? माले महाराज आप ज्ञानी हैं सर्वज्ञ हैं सब कुछ जानते हैं, मेरे बेटे की शादी होने वाली है, बहू कैसे आएगी ये आप बता दीजिए, उसके लिए मैं सर्वज्ञ हूं, बोलो। अब उसने प्रशंसा कर ली तो उत्तर देना पड़ेगा कि नहीं है? इतना बड़ा ऊंचे सिंहासन में रख दिया, वहां पहुंचने के बाद ऐसे सीधा नीचे कूदना तो नहीं चाहिए। अपनी मर्यादा में रहते हुए हमने भी नाटक शुरू किए, हमने आंख बंद कर ली, सीधा रीढ़ के हड्डी कम कर सीधा किया, कमर सीधा कर ली, आंख बंद कर ली, थोड़ा सा लंबा श्वास ले लिया। लगभग 5 मिनट मौन रहने के बाद नाटक ही तो था। उसके बाद मैंने कहा, माता जी हमने देख लिया, सब पता लगा लिया, हम सब जान गए। बहू आएगी, जैसे भी आएगी, बहू तुम्हारे कल्याण करने वाली आएगी, मां तुम्हारी कल्याण करने वाली आएगी। महाराज कल्याण का मतलब? तो हमने कहा तुम्हारा हित ही करने वाली आएगी, कल्याण ही करने वाली आएगी। तो कैसे चाहती हो? बोले हम तो सेवा करने वाली चाहते हैं, प्रेम करने वाली, आदर करने वाली। तुम लोग भी तो ऐसे चाहते हो ना? गलत है वो, हाँ गलत है। इतना चाहना ये गलत है सर्वथा। महाराज यदि ऐसी बहू आई तो ठीक है, कहीं झगड़ा करने वाली, अशांति करने वाली, मारपीट करने वाली वो आई तो फिर घर नरक बना देगी। महाराज हमने कहा बहू जैसे भी आएगी तुम्हारा कल्याण करने वाली आएगी, चिंता न करो। एक खराब बहू आ गई तो कैसे हमारा कल्याण होगा महाराज? तो हमने उसको एक उदाहरण दिया, आप भी समझ लो। जब तुम अकेले घर में होते हो, मान लो कि तुम अकेले घर में हो, कोई नहीं है, तब उस समय अकेले अवस्था में तुम बीमार पड़ गए, तुमको बुखार आ गया, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, तुम बीमार पड़ गए। परिणाम हो गया कि हफ्तों तुम नहा नहीं पा रहे हो, कपड़े नहीं धो पा रहे हो, घर में झाड़ू पोछा नहीं कर पा रहे हो, बर्तन मांडे नहीं कर पा रहे हो, तो घर चारों तरफ से गंदगी से भरा हुआ है। क्यों अकेले हो तुम? इतने में किसी को पता चला और बाहर का व्यक्ति आया, उसने देखा घर बहुत गंदगी से भरा हुआ है। उसने कहा कि मां मैं आपके ये घर की सफाई कर दूं, बर्तन मांज दूं, कपड़े धो दूं, झाड़ू कर दूं, पोछा कर दूं, तो तुम खुशी से उसको स्वीकृति दोगी कि नहीं उस अवस्था में? क्योंकि जब खुद ही करने की क्षमता जहां नहीं है तो कोई यदि करने आ जाता है तो हम प्रसन्नता पूर्वक उसको वो करने की अनुमति भी दे देते हैं, और कर लेने के बाद वो झाड़ू लगा के कचरा सब बाहर निकाल देती है, बर्तन भांडे सब कर कार के जब कहते मां अब जाऊं मैं, तो हम उसको स्वीकृति के साथ साथ धन्यवाद भी देंगे। देंगे कि नहीं है? इसी तरह यदि कोई दुष्ट बहू आई तुम्हारे घर में, तो मैंने उसको समझाया, यदि कोई दुष्ट बहू आई तो जन्म जन्मांतर के जो तुमने जानकर न जानकर किए हुए सारे पाप तुम्हारे अंदर गंदगी की तरह पड़े हुए हैं। वो दुष्ट बहू क्या करती है पता है? तुमको रात दिन झगड़ा करके परेशान करके वो कचरा यानी पाप कर्म निकालती है। हाँ, क्योंकि कर्म का फल भोगे बिना समाप्त नहीं होता है। यदि वो तुमको सताएगी नहीं, तुम दुखी नहीं होगे, पीड़ित नहीं होगे, कष्ट में नहीं रहोगे, तो पाप निकलेगा नहीं। पाप निकलेगा जब तब तुमको कष्ट देगा ही देगा। तुमको प्रसन्नता देकर पाप कभी नहीं जाता है, रुलाकर पाप जाता है। तुम्हें आराम देकर पाप कभी भी निकलता नहीं है तुम्हारा पाप, तुमको कष्ट देकर ही पापक्षय होता है। तो जब तुम्हारी बहू तुम्हारे सामने तुम्हारा अपमान, तिरस्कार, अवहेलना, झगड़ा, द्वेष करने लगेगी, तुम अति दुखी होगी। और जब तुम दुखी होगी, इसका मतलब यह है कि तुम्हारा जन्मांतर ये पाप ये फल देकर जा रहे, नष्ट हो रहे। ऐसी बहू को तो पहले धन्यवाद देना बेटा। और यदि अच्छी बहू आ गई वो क्या करेगी पता है? तुम्हारी प्रशंसा करती रहेगी, तुम्हारी सेवा करेगी, तुम्हारी प्रशंसा करेगी। परिणाम क्या होगा कि तुमको सुखानुभूति होगी, प्रसन्नता होगी। ये सुखानुभूति प्रसन्नता पुण्य क्षय का प्रतीक है। बोलो तुम क्या चाहते हो? पाप क्षय हो जाए ये चाहते हो कि पुण्य क्षय हो जाए ये चाहते हो? माताओ क्या चाहते हो बोलो? पाप क्षय? तो भगवान से प्रार्थना करना कि घर में बहू कैसा आवे, दुष्ट आवे, पाप क्षय हो जाए। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है, पाप क्षय हो जाए ये गलत कह रहे हो। वेदांत दर्शन पाप क्षय ये प्रयोजन नहीं मानता, वेदांत दर्शन तो पुण्य क्षय भी मानता है। पुण्य और पाप दोनों क्षय हुए बिना आपका श्रवण किया हुआ निधिध्यासन फलीभूत नहीं होगा। पाप और पुण्य दोनों क्षय हुए बिना यदा पश्य पश्यते रुक्म वर्णम कर्तारमीशम पुरुषम ब्रह्म योनिम तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजनम परमम साम्यम उपेति। पुण्य और पाप दोनों ही नष्ट होंगे तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। केवल पाप क्षय हुआ और पुण्य रह गया तो वही पुण्य भोगने के लिए आपको स्वर्ग जाना पड़ेगा, पुण्य क्षय के बाद फिर वापस ही मृत्युलोक में आना पड़ेगा। शास्त्र तो तुम्हारे पास है ही है। और पुण्य क्षय हो गया और पाप क्षय हुआ नहीं तो पुण्य क्षय के बाद पाप क्षय करने के लिए नरक जाना पड़ेगा। बोलो पुण्य क्षय करके पहले नरक जाना चाहते हो कि पाप क्षय करके स्वर्ग जाना चाहते हो? पहले पाप क्षय कराना चाहते हो कि पुण्य क्षय? बोलो पाप क्षय तो भगवान से प्रार्थना करना यदि तुम्हारा बेटा ब्याहने के लायक है तो। क्या प्रार्थना करना? मैं सच कर रहा हूं, गलत नहीं कह रहा हूं है? मैं सच कर रहा हूं, गलत नहीं कह रहा हूं। घर में नौकर कैसा चाहते हो तुम? बोलो अच्छा सेवा करने वाला चाहते हो कि आज्ञाकारी न होकर मालिक को ही सताने वाला चाहते हो? यदि नौकर मालिक को सताने लग गया तो ये समझ लेना मालिक के ही खाकर मालिक को ही सताने लगा और उस नौकर से तुम दुखी और पीड़ित तो हो गए तो ये समझ लेना कि वो हमारे पाप को क्षय करने के लिए आया है। बस भगवान ने पाप क्षय करने के लिए उसको भेजा है, प्रसन्नता से उसको रखना। संत कबीर ने तो कह दिया है कि निंदक नियर राखिए आंगन कुटीर छवाए, खाने भी दो रहने के लिए घर भी दो है? और उसको कहो कि तुम्हारा काम क्या है तो बोले खाली तुम मेरे दोष देखते रहना, कहां कहां मेरी कमी है, कहां कहां मेरे कमजोरियां हैं, उन सबका पता लगा लगा के मेरे सामने उन सबका वर्णन करते रहना ताकि दोष दर्शन से मेरा कमी कमजोरी क्षय हो जाए। प्रशंसक को सामने नहीं रखना, प्रशंसक को दूर रखना, क्योंकि प्रशंसक जो है अतिवादी होते हैं, जो नहीं है उसको भी कह देते हैं। निंदक सत्यवादी होता है, निंदक सत्यवादी होता है। तुम्हारी कमी कमजोरी जो नहीं है उसको निंदक कह ही नहीं सकता है, वो हिम्मत नहीं करेगा। और जहां कोई कमी कमजोरी होगी उसी पर वो दृष्टि रखता है तो उसी को उजागर कर देता है वो। तो इसीलिए सबसे तुम्हारा हमारा मित्र प्रशंसक खतरनाक है और निंदक हमारा परम मित्र है। तो हम कह रहे थे त्रिकालदर्शी की घटना, मां को कहा और बहू अच्छी आ गई तो तुम्हारे कचरा तो घर में ही रहेगा। उन्हें कहा कि वापस नहीं करेगी, जन्मांतरीय पाप को तो क्षय करेगी नहीं, उल्टा पुण्य क्षय कर देगी है? ये कहने के बाद महाराज आपने तो हमको तो भ्रम में डाल दिया, ये तो आपने बहुत गड़बड़ कर दिया, भ्रम में डाल दिया महाराज। नहीं भैया आप प्रार्थना करो महाराज अच्छी बहू आवे। अब हमने कहा जैसे भी आए वो अच्छी बहू कहलाएगी, ये दृष्टि अनुसार सृष्टि होता है ना। तो प्रसंग क्या चल रहा है, सनत कुमारों की बात है। पुण्य पाप क्षय हो जाने के बाद सनत कुमार बचपन से ही पैदा से ही शुरू से ही ब्रह्म विचार में लग गए और हम तो मरने के समय आते जा रहा है ब्रह्म विचार के लिए फुर्सत नहीं है। तो घूमते घूमते नारद जी पहुंचे। छांदोग्य उपनिषद का प्रसंग है, यहां लोक गुरु की व्याख्या कर रहा हूं। भगवान शिव क्या है, उनका नाम लोक गुरु हो तो प्रसंग वो क्यों लोक गुरु हुए भगवान शिव। तो नारद जी पहुंच गए तो उनके सत्संग में नारद जी भी बैठ गए। नारद जी भी बंधु है ना सनत कुमारों के, नारद जी भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। सनत कुमारों सराह मानस पुत्र है, योनिज नहीं है, संकल्पज है। हाँ। जिसके प्रारब्ध होता है वो योनिज होता है, जिसके प्रारब्ध नहीं होता वो संकल्पज होते हैं। तो नारद जी पहुंच गए और उनके सत्संग में बैठ गए तो बढ़िया ब्रह्म विचार चल रहा था। शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषिर परिभू स्वयंभू याथा तथ्यत्वार्थान भेदता शाश्वती व समाभ्य आदि आदि मंत्रों का व्याख्या, मंत्रों की व्याख्या चल रही थी। नारद जी को बड़ा अच्छा लगा। तो नारद जी ने पूछा कि भगवान आप लोगों को ये दिव्य ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ, किसने दिया है? मैं भी मानस पुत्र हूं, मुझे नहीं मिला, और तुमको कहां से मिला, किसने दिया? सनत कुमारों ने कहा कि किसी ने नहीं, ये तो हमारा तो जन्मजात सिद्ध है ये विद्या। हा, नारद जी ने एक बात कही थी, जन्मजात सिद्ध होने पर भी शास्त्र विधि का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, क्योंकि गीता में लिखा है यत शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारत न तो सिद्धिम वापनोति न शांतिम न पराम गतिम न सुखम न पराम गतिम। शास्त्र विधि का उल्लंघन कोई नहीं करे, सब शास्त्र विधि के अनुसार ही विचरण करे। तो आपने गुरु किया कि नहीं? सनत कुमारों ने कहा था हमने किसी को गुरु नहीं किया है, हमको जरूरत ही नहीं गुरु करने की, हम स्वयं ज्ञानी हैं। तो नारद जी ने कहा कि नहीं, गुरु तो करना ही चाहिए। शास्त्र विधि ब्रह्म विद्या गुरु मुख से सुने बिना शास्त्र अपराध प्रत्यवाय लगेगा, गुरुमुख से सुनना ही चाहिए। महावाक्य गुरुमुख से सुनना ही चाहिए, किताब में पढ़ लिया और महावाक्य से ज्ञान हो गया, ये शास्त्र अपराध है, प्रज्ञा अपराध कहलाता है। बहुत बड़ा प्रज्ञा अपराध है। किताब में लिखा हुआ तुम्हारे जानते हुए भी गुरुमुख से महावाक्य की दीक्षा लेनी चाहिए, ऐसा नहीं केवल सुन लिया, दीक्षा होती है। दीक्षा अलग चीज है, श्रवण अलग चीज है। मंत्रों की दीक्षा, मंत्र जानते हो इतनी मात्रा से काम नहीं चलेगा, मंत्रों की दीक्षा लेनी पड़ती है। महावाक्य आपने जानते हो इतनी मात्रा से काम नहीं चलेगा, महावाक्य की दीक्षा ली जाती है। ये वैदिक सनातन धर्म में ही दीक्षा की परंपरा है और किसी धर्म में दीक्षा की परंपरा नहीं है। तो नारद जी ने कहा तो तुम लोग गुरु कर लो, शास्त्र विधि पूरा हो जाएगा। इतना करके नारद जी तो चले गए। आप लोगों ने कई बार सुना हुआ प्रसंग है, फिर भी प्रासंगिक मैं कथा सुना देता हूं। तो सनत कुमारों के दिमाग में अब ये गुरु करने की बात तो कह गया नारद, ठीक कह रहा, गलत तो नहीं कह रहा, हमको कर लेनी चाहिए, लेकिन किसको गुरु बनाए? हमको जिसने पैदा किया है संकल्प से, तो उसको हम संकल्प पैदा करने वाले पिता कहेंगे, क्योंकि उससे बड़ा और कोई है ही नहीं दुनिया में। तो हम उन्हीं के पास जाते हैं और हमको दीक्षा दो कहेंगे, विधिवत श्रद्धा पूर्वक उनसे दीक्षा ले लेंगे तो हमारी जो विद्या है, हमारा अनुभव है, वह शास्त्र विधि से प्रामाणिक होगा। चले गए ब्रह्मलोक सनत कुमार, और दूर से देखा तो ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा येन कुलाल वन नियमितम ब्रह्मांड भांडोदरे। ब्रह्मा जी तो इस तरह कर्म में लगे हुए थे कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा जीव लाइन में प्रारब्ध अनुसार शरीर लेने के लिए आए हैं, क्यों में खड़े हैं जीवात्माएं, और ब्रह्मा जी पंचमहाभूतों के मेटेरियल पदार्थ लेकर बैठे हैं, और जो जीव सामने आता है, महाराज हमको प्रारब्ध भोगने के लिए हमारे प्रारब्ध अनुसार हमको शरीर दो, यद भोगायतनम तदेव शरीरम चेष्टाश्रय हुआ, हम प्रारब्ध भी भोगे और नया कर्म भी कर सके, ऐसा शरीर दो हमको। ब्रह्मा जी उनको शरीर देने से पहले देखते थे सूक्ष्म दृष्टि से, इसको कैसा शरीर देना है। अब यदि कुत्ते का शरीर देना हो तो एक सांचा बना रखा था, कुत्ते का लिया, वो पंचभूत का मेटेरियल उसमें डाल दिया। आप लोगों ने कहीं ईंट बनता हुआ देखा होगा ना, ईंट में बनाते समय में मिट्टी गीला बनाकर रखते हैं एक तरफ ढेर, और तो ईंट के एक सांचा लकड़ी का सांचा होता है, वो गीली मिट्टी उसमें डालते हैं और ये तप तुप कर देते हैं और उसको गिराते हैं, ईंट का बन गया डिजाइन, कुछ नहीं, गीली मिट्टी लकड़ी के सांचे में डाल दिया, हो गया उस डिजाइन का। तो जैसा डिजाइन बनाना है वैसे सांचे अलग अलग है, मेटेरियल तो मिट्टी तो वही है। इसीलिए कुत्ते का भी पंचमहाभूत का शरीर है और तुम्हारा भी पंचमहाभूत का शरीर है। कुत्ते के शरीर पंचमहाभूत से भिन्न शरीर नहीं है, हमारा शरीर पंचमहाभूतों से भिन्न नहीं है। पशु का शरीर, गाय का शरीर, भैंस का शरीर, प्राणी मात्रों का शरीर पंचीकृत पंचमहाभूत एक ही मेटेरियल से बना हुआ है, फिर आकार और डिजाइन में क्यों फर्क है? तो सांचे में फर्क है भाई। तो कुत्ता आ गया, इसको मनुष्य शरीर देना ठीक नहीं है, ये केवल भोग योनि के लायक है इसका प्रारब्ध, इसलिए भोग योनि के लिए यही सांचा है। कुत्ता लिया, कुत्ते का सांचा लिया, मिट्टी डाला, लिया और कहा कि घुस जा इसमें, बना दिया स्टेचू और कहा जीवात्मा को घुस जा इसमें जा। वो फट से घुस दिया तो कुत्ता चलने लगा, वो मूर्ति चलने लगा। हमारे मूर्तिकार बेचारे मूर्ति तो बना देते हैं, प्राण नहीं दे पाते हैं। ब्रह्मा जी ऐसे मूर्तिकार हैं कि प्राण तो पहले से विद्यमान है, जीवन तो पहले से विद्यमान था, खाली मूर्ति बना दिया, कहा कि घुस जा तो घुस गया। ऐतरेय उपनिषद में ये प्रक्रिया है, ऐतरेय उपनिषद की प्रक्रिया ये, जीव कैसे प्रवेश करता है। तो इसी तरह लगे हुए थे प्रपंच में, सनत कुमारों ने देखा कि ये इतने प्रपंच में लगा है, हम कहां विरक्त उर्धरेत निवृत्त मार्गी, कहां ये प्रवृत्ति में लगा हुआ है, इसका चेला बनेंगे तो कल से कहेगा तुम लोग भी लग जाओ काम में, तो ये इसका चेला तो बनना ठीक नहीं है भाई। फिर किसका चेला बनोगे? बोले इसका भी बाप पड़ा है ना, वो विष्णु है जिसके नाभि से इनका जन्म हुआ, तो उसके पास जाए। बोले कहां रहता है वो? बोले क्षीर सागर में सोता है वो। सोता है? बोले हाँ है। तो जाओ, वही क्षीर सागर पहुंच गए। अब तो क्या था, क्षीर सागर में जब नजदीक पहुंचे, विष्णु को देखा तो और भी ज्यादा आपत्तिजनक अवस्था में थे। कहां सनत कुमार, स्त्री की छाया का भी स्पर्श न करने वाले उर्धरेत ब्रह्मचारी, और कहां भगवान विष्णु, सारा वैभव अलंकार तो सारे शरीर में श्रृंगार के रूप में रखा है, वैजयंती माला, मुकुट, चार हाथ, और भूदेवी और श्रीदेवी उनके चरण दबा रहे हैं, क्या आनंद से लेटा हुआ है। अरे राम राम राम, ये तो और भी चौपट है, ये तो इतना विलासी है, इतना भोग प्रदान है ये, इसको कैसे गुरु बनाएंगे? चलो यहां से निकलो, फिर किसके पास जाए? बोले उसका भी एक बाप है, कहते हैं उसका भी एक बाप है। कौन है वो? बोले वो शिव जी है। वो कहां रहता है? बोले कैलाश पर्वत में रहता है। चलो वहां। तो पहुंचे, गए कैलाश, जा रहे थे, चढ़ाई बड़े मुश्किल से चढ़ाई करते हुए सनत कुमार वहां पहुंचे, है ना? तो जब वहां पहुंचे तो नजदीक पहुंचा तो भगवान शिव को देखा तो सिंहासन के ऊपर बैठे हैं, वामांगे च विराजति भूधर सुता, गोद में भूधर सुता पर्वत की पुत्री पार्वती को गोद में रखा हुआ है, और बायां हाथ आलिंगन किया हुआ है, उनके कंधे पर रखा हुआ है। अरे राम 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 राम। विष्णु ने तो थोड़ा दूर रखा था, जमीन में रखा था, उसने तो गोदई में ले रखा है, ये तो और चौपट है। हम जिसको नहीं चाहते थे वही सामने आ रहा है, जिसको महान कर रहे हैं उसी में ज्यादा दोष दिख रहा है। अब किसको गुरु बनाए? इसको तो ऐसे भोगी और विलासी को तो गुरु बनाना ठीक नहीं है, है? वहां से भी निराश हताश होकर, अब इनसे बड़ा कोई नहीं है, इसका मतलब ये जन्म में हमको गुरु मिलने वाला नहीं है, निगुरो ही रहेंगे भाई आप। बड़े दुखी होकर सनत कुमार कैलाश से भी वापस आ रहे थे, अंतर्यामी भगवान शिव के हृदय में करुणा भाव जग गया, उनको थम मालूम हो गया। ये सनत कुमार चार कुमार दीक्षा लेके शास्त्र विधि पूरा करने के लिए गुरु खोजते हुए चल रहे हैं, लेकिन गुरु खोजने के लिए इन्होंने आंख में दोष का चश्मा पहन लिया, गुण न देखकर दोष ही देखते हुए चलते हैं, है ना? लेकिन फिर भी इनका उद्धार तो करना चाहिए। इनके हृदय में दोष होने पर भी ये जिज्ञासु हैं, मुमुक्षु हैं, शास्त्र विधि को पूरा करना चाहते हैं। तो यो यस्यः, जो जैसी भावना करता है उसकी भावना अनुसार फल देना परमात्मा का मुख्य प्रयोजन है। तो पार्वती को कहा कि तुम नीचे बैठो। बोले क्या बात है महाराज, आज नीचे क्यों बिठा रहे हो, हमेशा गोद में बिठाते हो, अब आज नीचे। बोले तुम बैठो, थोड़ा भोजन वगैरह बढ़िया पका लो, तो हम एक जरूरी काम में जा रहे हैं। भगवान शिव निकले और छोटा 5 वर्ष के स्वरूप को धारण करके कान में जनेऊ है और बागंबर निकाल दिया है, एक कौपीन पहन रखा है और बस पीछे पीछे सनत कुमार जिधर जा रहे थे पीछे पीछे भगवान शिव दौड़ते हुए जा रहे हैं। सनत कुमार 16 वर्ष के हैं, भगवान शिव 5 वर्ष के, दौड़ते हुए जा रहे हैं। अब सनत कुमार को भी क्रॉस करते हुए आगे निकल गए, देखा ही नहीं, हाँ, देखा ही नहीं शिव जी ने सनत कुमार भी हैं, कुछ नहीं, दौड़ते हुए निकल गए। सनत कुमारों ने देखा, अरे ये बालक है, बहुत छोटा बालक है, केवल कौपिन पहन रखा है, जनेऊ पहन रखा है, शरीर में और कुछ नहीं, हाथ में कुछ नहीं, ये कौन है, कहां से आ रहा है? लेकिन जो भी हो, ये बड़ा त्यागी है, कम उम्र में इतना बड़ा त्याग, हम तो 16 वर्ष के हो गए और वो तो 5 वर्ष में इतना त्यागी हो गया, उम्र से क्या, हमको गुरु चाहिए, जैसा गुरु खोजे हैं हम खोज रहे हैं, ये हाव भाव में लक्षण से तो वैसा ही है, लेकिन वो हमारे तरफ देखता ही नहीं है, हमसे बात ही नहीं किया, दौड़ के जा रहा है। तो सनत कुमार के मन में श्रद्धा जग गई, उस दृश्य को देखकर, शिवजी के उस स्वरूप को देखकर सनत कुमारों के मन में श्रद्धा जग गई और सनत कुमार भी जल्दी जल्दी चलने लगे। और भगवान शिव तो बहुत दूर जाकर सड़क के बगल में एक बट वृक्ष था, दक्षिण की तरफ मुंह करके उस बट वृक्ष के नीचे बैठ गए और बस ध्यान मुद्रा में बैठ गए। सनत कुमार थोड़ी देर में जब वहां पहुंचे तो देखा उसी बालक को, आहा, ऐसे निर्जन जंगल में इतना छोटा बालक, अपने साथ कोई सामग्री नहीं, और क्या निश्चिंत ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ, उसको डर नहीं, भय नहीं, चिंता नहीं, ये असली गुरु तो यही है। लेकिन कौन है, हमको क्या लेना है, जो कुछ हो, हम जैसा गुरु को लक्षण खोज रहे थे वैसा ही मिल रहा है, इसी को गुरु बनाना है, इसके अलावा तो अब तो और गुरु की संभावना ही नहीं है। बैठ गए वो भी वहीं घेर के बैठ गए। चित्रम बटतरोर मूले वृद्धा शिष्या गुरोर युवा, गुरु युवा 5 वर्ष का, शिष्या वृद्धा 16 वर्ष के, बड़ वृक्ष है, आश्चर्य की घटना है, शिष्य लोग वहीं घेर के बैठ गए, जब भी समाधि तोड़ेंगे हम विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर उपदेश करने के लिए कहेंगे, दीक्षा देने के लिए कहेंगे, महावाक्य का उपदेश करो कहेंगे, और उनकी कृपा से उपदेश होगा तो हम गुरु वाले हो जाएंगे, हमारी विद्या शास्त्र प्रमाण युक्त होगा, दीक्षा पूर्वक होगी, तब फिर हम निश्चिंत प्रचार करेंगे, फलीभूत होगी हमारी विद्या, विधिपूर्वक होने के कारण हमारी विद्या फलीभूत होगी। बैठ गए घेर के, लेकिन भगवान शिव है, ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, उनको पता ही नहीं कि कौन बैठा है आगे, कहां से आगे, कौन आगे, कुछ नहीं, निश्चिंत बैठे हैं। सनत कुमार भी बैठ गए हुए। तो कुछ समय के बाद भगवान शिव ने उसी मुद्रा में बैठे बैठे अंगुष्ठ और तर्जनी को जोड़कर धीरे से हाथ ऊपर उठाया, यो भद्रया मुद्रया, इसी को भद्रा मुद्रा, चिन मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ये मुद्रा बोलते हैं, ऐसे उठाया और इतने कंधे तक हाथ को उठा के फिर ध्यान में बैठ गए, कुछ बोले नहीं। सनत कुमारों को जब उन्होंने हाथ हिलाई तो लगा कि अब समाधि खुलेगा, अब ज्ञान देंगे, लेकिन फिर भी मौन हो गए। इतनी मात्र से उनके हृदय में बोध हो गया, सनत कुमारों के हृदय में अर्थबोध, अरे ये न बोले तो क्या है, उन्होंने ये जो मुद्रा बनाई है यही तो हमको उपदेश दिया है। मतलब क्या उपदेश दिया? तो सनत कुमार ने कहा, ये तत्त्वम असि इस महावाक्य के मुद्रा है, ये जीव ब्रह्म, जीव और ब्रह्म की एकता का ये संकेत है। तत्त्वमसि महावाक्य जीव ब्रह्म को एकता का उपदेश करता है, उपाधि से विनिर्मुक्त जीव ब्रह्म की एकता, ये तत्त्वमसि महावाक्य का आजकल प्रातःकाल प्रवचन श्रुति सार समुद्धरणम में तत्त्वमसि इसी वाक्य पर ही बड़ा विचार चल रहा है। बोले ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति विषम है, तीन उंगली देखा कि नहीं, ये कभी बराबर की नहीं होगी, वो है ये कब होगी बराबर की? बोले एक बार होती है। ये तीन गुण के प्रतीक हैं तीन उंगली, और ये विषमता सृष्टि का प्रतीक है। प्रकृति के जो तीन गुण में विषमता रहती है तब ये विकार है प्रकृति का, और ये संसार प्रकृति का विकार है, क्योंकि गुणत्रय में विषमता है, और जब तीन गुणों में साम्यता आती है बराबर, तीनों गुण बराबर के हो जाएंगे, सत्व गुण भी 100%, रजोगुण भी 100%, तमोगुण भी 100% में जरा इक्वल में पहुंचते हैं तो प्रलय हो जाएगा, जगत में कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ नहीं, महातत्व भी नहीं रहेगा, हाँ केवल अव्यक्त प्रकृति और परमात्मा रहेगा, दो के अलावा तीसरा नहीं रहेगा महाप्रलय में। हाँ महाप्रलय में द्वैत रहता है, लेकिन मोक्ष अवस्था में द्वैत भी नहीं रहता, इतना अंतर है देख लो। तो प्रकृति की साम्य अवस्था महाप्रलय है, सृष्टि का लय अवस्था है, प्रकृति में जब विषमता आती है तो फिर सृष्टि शुरू होता है, तो वही आप विषमता है इसलिए सृष्टि है, तीन उंगली कभी बराबर नहीं है, विषम है, ये त्रिगुणात्मिका विश्व प्रपंच का प्रतीक है ये, और इनके साथ ये जीव आत्मा जुड़ा हुआ है। ये तो क्या हुआ, त्रिगुणात्मिका जगत प्रपंच के जो धर्म है वो ये जीवात्मा में भी, इनके संयोग से जीवात्मा भी वो प्रपंच धर्म, देह धर्म, मनोधर्म, इंद्रिय धर्म, प्राण धर्म, प्रकृति के धर्म, बुद्धि के धर्म आदि सब जीवात्मा में भी संक्रमित हो गया, जैसे अग्नि के संयोग से लोहे में दाहकत्व संक्रमित होता है, इसी तरह त्रिगुणात्मिका प्रकृति के संयोग से जीवात्मा में जगत धर्म का भी संक्रमण हो गया। इसी तरह जगत में जन्म स्थिति प्रलय आदि षड्भाव विकार हैं, तो जीवात्मा में भी वह षड्भाव विकार दिखने लग गया, और तो जीवात्मा अपने आप को भी मैं जन्म वाला, बढ़ने वाला, मरने वाला, घटने वाला इत्यादि मानने लग गए। जब ये जीवात्मा इन त्रिगुणात्मिका प्रकृति से अलग होकर ये असंग, देखो असंग है ना, कितना स्पेस है, इसके बीच में कोई स्पेस नहीं है, और यहां कितना स्पेस है, जगत और ब्रह्म के बीच में जीवात्मा, जीवात्मा जगत के साथ जुड़ा तो जन्म मृत्यु भोगा भूख प्यास ये सब उसको लगेंगे, और ये यहां से कट होकर जब ब्रह्म के साथ जुड़ता है असंग के साथ, तो ब्रह्म में जो गुण धर्म आदि हैं असंगता नित्य अविकारिता सर्वव्यापकता विभूता सत्यता है? वो सब जीवात्मा में भी आ गए। इसलिए जीवात्मा ब्रह्म की एकता का ये प्रतीक है, सिंबल है, तत्त्वमसि महावाक्य का ये अर्थ है। ये ज्ञान हमको तो महावाक्य का उपदेश कर लिया शिव जी ने, वाह ये बालक ने, ये गुरु ने, ये अब बालक नहीं हमारे दृष्टि में, ये हमारे साक्षात गुरु हैं। सनत कुमारों ने, चारों ने उस बाल मूर्ति शिव जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया तो भगवान शिव दक्षिणा मूर्ति हो गए। उस बाल स्वरूप शिव का नाम है दक्षिणा मूर्ति, और इस स्वरूप का भगवान शंकराचार्य जी ने 10 श्लोकों से वंदना किए। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्विबोध भूतम यथा निद्रया यह साक्षात कुरुते प्रबोध समय स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरु मूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणा मूर्तये। तो सनत कुमार तो गुरु धारण कर लिया और चले गए। तो भगवान शिव ने कहा कि हो गया, अब इनका कल्याण हो गया, हमारा प्रयोजन पूरा हो गया। वो आ गए कैलाश में, पार्वती को कहा कि हमको खाना दो, भोजन तैयार है कि नहीं? बोले तैयार है, लेकिन तुम गए कहां थे बताओ तो सही। बोले तुझे पता नहीं है, हम गुरु बन गए थे। हम कहां गए थे? गुरु बनने गए थे, और वही आज तक भी सदा शिव समारंभान शंकराचार्य मध्यमान अस्मद आचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा। हम वंदना ही करते वो विद्या सदा शिव से सनत कुमारों में आकर वहीं से सुखदेव आदि में होता हुआ आज वर्तमान हमारे गुरुओं में जो हमको ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हैं वही विद्या है, वही परंपरा है। तो सबसे पहला अब भगवान शिव क्या हुए इस परंपरा की दृष्टि से, इस प्रसंग से लोक गुरु हुए। ये देखो सभी के गुरु तो वही हो गए ना, हाँ? सबके गुरु तो वही हो गए लोक गुरु। मेरे चेले के भी चला, मेरे चेले जो मैंने दीक्षा दी है वो जो मेरे चेले होंगे उसके भी मूल गुरु कौन हो गया? शिव जी है, हो गया कि नहीं? तद्रुपान जी ने जिसको दीक्षा दी होगी उनके मूल गुरु कौन हो गए? वही शिव जी, वही तो परंपरा है सभी के पास। आज वर्तमान में जो अलग अलग गुरु हैं उनके पास जो दीक्षा विधि और विद्या है वो वही शिव जी का दिया हुआ है। इसलिए संबोधन है लोक गुरु। हे शिवा लोक गुरु, आपको गुरु बनने का बड़ा शौक है, हा? पत्नी को भी छोड़ दिया गुरु बनने के लिए, भोजन भी छोड़ दिया, घर भी छोड़ दिया, और थोड़ी देर गुरु बनने के लिए आप भाग गए, हा? बालक बनकर चल गए, पेड़ के नीचे बैठ गए, लगौटी लगा ली गुरु बनने के लिए, बागम्बर फेंक दिया, हा? लगौटी लगाकर बैठ गए। आप गुरु बनने के बड़े शौकीन हैं, लेकिन जब तक गुरु बनने के लिए जो सेवा करनी चाहिए, तो जो सेवा नहीं करेगा उसको आप शिष्य भी नहीं बनाएंगे, उपदेश भी नहीं करेंगे। तो मैं तो आपका सेवक हूं। तत्पादाम्बुज अर्चयामि परमम शिवम, मैं अपने हाथों से आपके चरण कमल की नित्य सेवा करता हूं, अर्चयामि। त्वत्पादाम्बुजम् अर्चयामि परमम् त्वं चिन्तयाम्यन्वहम् अनुअहम्। अह माने दिन, प्रतिदिन, अनु माने प्रतिदिन, अनु माने पश्चात। आज के दिन तो शिव पूजा की, और कल जो दिन आएगा उस दिन भी, फिर उसके अब दूसरा अनु अहम, अनु अह तम अनु अहम, प्रत्येक दिन है? तम चिंतयामि बुद्धिया, हाथ से भगवान शिव के नित्य निरंतर प्रतीकों के विग्रहों के पूजा करो। तो पादाम्बुज अर्चयामि परमम त्वं चिंतयाम्यन्वहम्। और बुद्धि से नित्य निरंतर परम तत्व का, शिव तत्व का चिंतन कर।
त्वामी शरणम व्रजामि वचसा,
हे ईसा त्वं शरणामि शरणम व्रजामि, चरणों से मैं तुम्हारे शरण में ही हूं। मैं जहां भी हूं मैं विचरण करता हूं, मैं आपके शरण में ही हूं।
त्वामी सम शरणामि,
मैं और किसी के शरण में नहीं हूं। भूख लगी तो भी मैं चाहता हूं कि तुमसे ही भोजन पाऊं। प्यास लगी तो मैं चाहता हूं कि तुमसे ही पानी की प्राप्ति हो और तुमसे ही प्रार्थना करूंगा, और शायद मुझे तो यह विश्वास है कि आप पानी बनकर भी मेरे प्यास को पूरा करते हो। तो हम शरण है हमें।
तुम आपस तुम व्योमा तुम उदाहरण आत्मा तुम इति च।
पुष्पदंताचार्य जी ने कहा ना, हे शिवा मुझे पता है तुम पृथ्वी हो और अन्न उत्पन्न करने के लिए तुम खुद पृथ्वी बन गए हो, और भूखे को भोजन देने के लिए पृथ्वी बनकर अन्न उत्पन्न करते हो। अन्नम ब्रह्मे इति विजानात उपनिषद ने कहा है, इसीलिए क्योंकि अन्न का उपादान कारण और आश्रय पृथ्वी और पृथ्वी खुद शिवरूप। तो आप भूखों को भोजन देने के लिए पृथ्वी बनकर अन्न उत्पन्न करके भूख निवृत्ति भी करते हो, तो तुम्हारे को आश्रय छोड़कर और किसके पास जाए। और प्यासों को पानी बनकर तुम धरणी तुम आप भगवान शिव खुद जल बनकर बह रहे हैं, और आपने आप जल बनकर अपना ही घर उजाड़ लिया केदारनाथ में, देख लो तो रुद्र हो गए वो। वास्तव में बहुत ही प्रकृति प्रकोप हुआ, पोल्यूशन बहुत, इतने पोल्यूशन हो गया था तो प्रकृति का प्रकोप हो गया, तो पोल्यूशन के चलते प्रकृति में बैलेंस नहीं रहा। नहीं तो पहाड़ों में बारिश नहीं होती है सामान्यतया, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में जहां पेड़ नहीं है वहां बारिश नहीं होती, एक वैज्ञानिक थियरी भी है। अब वहां पेड़ ही नहीं है, बादल फटने की क्या जरूरत है बोलो? जहां पेड़ ही नहीं है वहां बादल फटने का कोई क्या जरूरत है? फिर फट गया, चट्टान हो गया और बारिश आ गए, पूरा केदारनाथ मंदिर मलवा में बारिश का तो पानी और पत्थरों के कचरे में सब डूबा हुआ है बेचारा। इसलिए हे शिवा त्वमेव शरणम, मैं तुम्हारे शरण में हूं, मुझे जो चाहिए तुमसे पूरा हो सकता है, और मेरे प्रयोजन को पूरा नहीं कर सकते संसारी लोग। इसलिए एक कवि ने कहा, दिल्ली सरोवा जगदीश सरोवा मनोरथान पूरयितुं समर्थः, मेरे संपूर्ण मनोरथ को पूरा करने की क्षमता थोड़ी बहुत दिल्ली स्वर में है, और पूरे रूप में मनोरथ पूरा करने की क्षमता तो जगदीश स्वर में ही है। इनके अलावा अन्य निरपाले परिदीय माना, और राजाओं के द्वारा दिया हुआ जो वस्तु है द्रव्य है वो तो साकाय वास्यान लवणाय वास्यान, वो तो साग और नून के लिए पूरा होगा, उसके लिए भी पूरा हो कि ना हो है? बोलो, कोई राजा प्रसन्न होकर 1,00,000 रुपया दे देगा, आप हिसाब करिए कि एक कुटुंब के लिए 1,00,000 रुपया कितनी वर्ष के लिए नमक के लिए पूरा होगा, नमक का भाव आप लोग हिसाब करने में फट से हो, कितना रुपया किलो है आजकल हमको तो पता नहीं है, सामान्यतया 12 रुपया 1 किलो का। अब 1,00,000 की डिवाइडेड बाई किलो, अब कितना किलो कितनी वर्ष में, तो कितनी वर्ष आएगा उसकी सीमा है कि नहीं बोलो? उसके बाद क्या होगा उसका 1,00,000 रुपया से नमक, उसके बाद क्या खाएंगे नमक, कौन देगा? अरे वो सब पूरा करने वाला तो भगवान शिव जगदीश्वर ही है, उसके शरण में जाना चाहिए। उसके अलावा और के शरणों में क्यों जाना, मरण धर्मा के शरण में क्यों जाना, अमर के शरण में ही जाना चाहिए।
त्वामी सम शरणम ब्रजामि वचसा त्वामेव याचे विभु,
वाणी से हे शिव आपकी ही स्तुति प्रशंसा गाऊंगा और आपसे ही याचना करूंगा, तुम्हारे शरण में रहते हुए तुमसे ही याचना करता हूं। वीक्षाम्ये दिशा चाक्षुषीं सकरुणां दिव्यैश्चिरं प्रार्थितां। देवताओं ने भी, देवता स्वर्गस्थ देवताओं ने भी दीर्घ काल तक भगवान शिव के दर्शन की हलासा अभिलाषा करते हुए, प्रयत्न करते हुए, प्रार्थना करते हुए भी उन देवताओं को भी, इंद्र आदि देवताओं को भी, जो दर्शन के लिए दुर्लभ हजूर का जो आपके जो स्वरूप है, वीक्षाम्ये दिशा चाक्षुषीं, मैं अपने आंखों से प्रत्यक्ष देख सकूं। और या सकरुणा, मेरे प्रति आप करुणामय दृष्टि से वीक्षाम देखें, मुझे देखें। शंभो लोक गुरो मदीय मनस, हे शंभो, हे लोक गुरु, सबके कल्याण करने वाले और सबके गुरु हैं, उपदेश करना आपको बहुत शौक है, तो फिर मदीय मनस, इस मेरे जो एक मन है उसको मैंने सुयोग्य बना रखा है, संसार से विरक्त भी हुआ हुआ है, आपके भक्ति से अनुरक्त भी हुआ हुआ है, मेरे बस में है, मेरे आज्ञाकारी है, उद्दंड नहीं है, मैंने काफी इसको अनुशासित कर रखा है आज तक, इसलिए उस मन को आप सुख का, ब्रह्म विद्या का उपदेश करें। सुख का उपदेश सौख्यम उपदेशम कुरु, किसको? मदीय मनस, मेरे मन को आप समझाइए। मदीय मनस सौख्यम सुख का, सुख का माने ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या में ही सुख है, अन्यत्र सुख नहीं है। और आगे क्या कहेंगे कल देखेंगे भाई। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्यप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।